यीशु मसीह का प्रकाश तवाक्य संख्या 4 यशाया 40। यीशु मसीह के प्रकाश इस तवाक्य का जो संदेश अब अनुमुद्रित किया जा रहा है उसमें सत्य के रूप में अनुदितुस हिब्रानी शब्द की पहचान भी शामिल है, जो अन्य बातों के साथ साथ मसीह के चरित्र को अल्फा और ओमेगा के रूप में निरूपित करता है। किसी बात का आरंभ उसी बात के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। यह विचार पूरी बाइबल में व्याप्त है और मसीह का चरित्र बाइबल में प्रकट है क्योंकि वो वचन है। अल्फा और ओमेगा मसीह के चरित्र का वो तत्व है जिसकी पहचान स्वयं उन्होंने इस प्रमाण के रूप में कराई कि वे परमेश्वर है। यशाया का अध्याय 40 एक भविष्योक्तिपूर्ण कथानक की शुरुआत को चिह्नित करता है जो यशाया की पुस्तक के अंत अर्थात अध्याय 66 तक जारी रहता है। ये उस भेजे गए सांत्वनादाता की पहचान से आरंभ होता है जिसका वचन मसीह ने अपने चेलों को अपने प्रस्थान के कारण उन्हें सांत्वना देने के लिए दिया था। परंतु इस सांत्वनादाता का आगमन जैसे सभी भविष्यवाणियां अपनी सिद्ध पूर्ति अंतिम दिनों में पाता है। सांत्वनादाता के आगमन की यशाया और यीशु द्वारा की गई ये पहचान 18 जुलाई 2020 को घटित 144,000 के आंदोलन की निराशा की ओर संकेत करती है।
तो भी मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो सांत्वनादाता तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और जब वो आएगा तो वो संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। यूहन्ना सीधा 4:8।
पाप, धार्मिकता और न्याय ये वे शब्द हैं जिनका नाम उपयोग सांत्वनादाता संसार को रिप्रूव करने के लिए करेगा। रिप्रूव के रूप में अनुवादित शब्द में विश्वास दिलाना का अर्थ भी शामिल है। पाप, धार्मिकता और न्याय के तीन चरण उस हिब्रू शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका अनुवाद सत्य के रूप में किया जाता है। वो शब्द हिब्रू वर्णमाला के प्रथम, 13वें और अंतिम अक्षरों से बनाया गया था, और वो शब्द दर्शाता है कि सब कुछ का सृष्टिकर्ता प्रथम और अंतिम है, अल्फा और ओमेगा। जब सांत्वनादाता निराश 144,000 के पास आएगा, वो उन्हें और फिर संसार को ये विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है।
सांत्वना दो मेरी प्रजा को, तुम्हारा परमेश्वर कहता है, यरूशलेम से कोमलता से बोलो और उससे पुकार कर कहो कि उसका संघर्ष समाप्त हो गया है, उसका अधर्म क्षमा किया गया है, क्योंकि उसने अपने सब पापों के लिए प्रभु के हाथ से दुगुना भोग लिया है। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे परमेश्वर के लिए मरुभूमि में एक राजमार्ग सीधा करो। हर घाटी ऊंची की जाएगी और हर पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, टेढ़े मेढ़े सीधे किए जाएंगे और उबड़ खाबड़ स्थान समतल किए जाएंगे, और प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सब प्राणी एक साथ उसे देखेंगे, क्योंकि ये प्रभु के मुख ने कहा है। यशाया 40:1-5।
ये अंश उस अंतिम एलिया दूत के कार्य की पहचान कर रहा है जिसका प्रतिरूप विलियम मिलर में, उससे पहले योहन बपतिस्मा देने वाले में और उससे पहले एलिया में दिखाया गया था, और जिसे मलाकी ने वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाले दूत के रूप में पहचाना था। अंतिम एलिया आंदोलन में जब प्रभु उन लोगों को बल देने के लिए सांत्वनाकर्ता भेजता है जो निराश हो गए हैं और विलम्ब के समय में प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सब प्राणी उसे एक साथ देखेंगे। प्रभु की महिमा उसका स्वभाव है, और यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य उसके स्वभाव के उस तत्व की मुहर खोलना है जिसे अल्फा और ओमेगा के रूप में दर्शाया गया है। पहली 5 आयतों की प्रस्तावना के बाद जंगल में पुकारने वाले का शब्द परमेश्वर से पूछता है, मैं क्या पुकारूं?
एक वाणी ने कहा, पुकारो। उसने कहा, मैं क्या पुकारूं? सब प्राणी घास हैं और उनकी सारी शोभा मैदान के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, क्योंकि यहोवा की श्वास उस पर बहती है। निश्चय ही लोग घास हैं। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, पर हमारे परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहेगा। यशाया 40:6-8।
मसीह के चरित्र का वो संदेश जिसे अल्फा और ओमेगा के रूप में दर्शाया गया है, इस्लाम के प्रतीकवाद के भीतर रखा गया है। यज्केल 37 में मरी हुई हड्डियों की घाटी को पहले एकत्र किया जाता है और फिर चारों पवनों के भविष्य सूचक संदेश से उसे जीवन दिया जाता है।
स्वर्गदूत चारों हवाओं को थामे हुए हैं, जिन्हें एक क्रोधित घोड़े के रूप में दर्शाया गया है, जो बंधन तोड़कर छूटने और पूरी पृथ्वी पर दौड़ जाने को आतुर है, अपनी राह में विनाश और मृत्यु लेकर। क्या हम अनंत संसार की बिल्कुल कगार पर सोए रहें? क्या हम मंद, ठंडे और मृत रहें? ओह, काश कि हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर की आत्मा और श्वास उसकी प्रजा में फूंकी जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हों और जिए। हमें ये देखना चाहिए कि मार्ग संकीर्ण है और द्वार संकरा, परंतु जब हम उस संकरे द्वार से होकर गुजरते हैं, उसकी व्यापकता की कोई सीमा नहीं होती। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीज, खंड 20, 1700 दिसेन।
बाइबल की भविष्यवाणी का क्रोधित घोड़ा इस्लाम है। क्रोधित घोड़े को उसके विनाशकारी कार्य करने से रोका जा रहा है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 7 में चार स्वर्गदूतों द्वारा चार हवाओं को रोके रखने से दर्शाया गया है। जब तक 144,000 मुहर बंद ना हो जाएं, तब तक चार हवाओं को रोके रखा गया है।
और इन बातों के बाद मैंने देखा कि चार स्वर्गदूत पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े थे। वे पृथ्वी की चारों दिशाओं की हवाओं को थामे हुए थे, ताकि न पृथ्वी पर, न समुद्र पर और न किसी वृक्ष पर पवन बहे। और मैंने एक और स्वर्गदूत को पूर्व दिशा से उदय होते हुए देखा, जिसके पास जीवित परमेश्वर की मुहर थी, और उसने उन चार स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के ललाटों पर मुहर न लगा दें, तब तक ना पृथ्वी को, ना समुद्र को और ना वृक्षों को हानि पहुंचाओ। प्रकाशित वाक्य 7:3।
चारों हवाओं को रोके रखा जाना ये दर्शाता है कि इस्लाम को तब तक रोके रखा जाएगा जब तक परमेश्वर के लोगों पर मुहर लगाने का कार्य पूरा नहीं हो जाता। प्रकाशित वाक्य में इस्लाम को 7 तुरहियों में से अंतिम 3 तथा 3 विपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है।
और मैंने देखा और एक स्वर्गदूत को आकाश के बीचों बीच उड़ते हुए सुना, जो उच्च स्वर में कह रहा था, हाय 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 पृथ्वी के निवासियों पर, उन अन्य तुरही ध्वनियों के कारण जो 3 स्वर्गदूतों की हैं और जो अभी बजनी बाकी हैं। प्रकाशित वाक्य 8:13।
3 विपत्ति की तुरहियों का परिचय देने के बाद यूहन्ना अध्याय 9 में इस्लाम की विशेषताओं का वर्णन करता है। अध्याय 9 के 4 पद में इस्लाम को एक आदेश दिया गया है जो मोहम्मद के बाद पहले नेता अबू बकर के इतिहास में पूरा हुआ।
और उन्हें ये आज्ञा दी गई कि वे न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी वृक्ष को हानि पहुंचाएं, परंतु केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथों पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 9:4।
उरिया स्मिथ ने अबू बकर और 4 पद के बीच संबंध की पहचान की।
मोहम्मद की मृत्यु के बाद ईस्वी सन 733 में नेतृत्व का उत्तराधिकार अबू बकर को मिला, और जैसे ही उन्होंने अपना अधिकार और शासन भलीभांति स्थापित कर लिया, उन्होंने अरब कबीलों को एक परिपत्र भेजा, जिसमें से निम्नलिखित अंश है। जब तुम प्रभु की लड़ाइयां लड़ो, तो मर्दों की तरह अपना कर्तव्य निभाओ, पीठ न फेरो, पर तुम्हारी विजय स्त्रियों और बच्चों के रक्त से कलंकित न हो। खजूर के पेड़ों को नष्ट मत करो और किसी अनाज के खेत को मत चलाओ। फलों के पेड़ मत काटो और पशुओं को कोई हानि मत पहुंचाओ, सिवाय उनके जिन्हें खाने के लिए मारो। जब तुम कोई वाचा या समझौता करो, तो उस पर अटल रहो और अपने वचन के सच्चे है। और जब तुम जाओगे, तो तुम्हें कुछ धार्मिक व्यक्ति मिलेंगे जो मठों में एकांत वास करते हैं और उसी रीति से परमेश्वर की सेवा करने का निश्चय रखते हैं। उन्हें छोड़ देना, न उन्हें मारना और न उनके मठों को नष्ट करना। और तुम्हें एक दूसरी किस्म के लोग भी मिलेंगे जो शैतान की सभा के हैं, जिनके सिरों का ऊपरी भाग मुंडा हुआ है। उनकी खोपड़ियां मैं चीरने में तनिक भी संकोच न करना और उन्हें कोई रियायत न देना, जब तक कि वे या तो मुसलमान न बन जाएं या कर अदा न करें। यूराया स्मिथ, डैनियल एंड द रेवलेशन 500।
उरिया स्मिथ आगे चलकर मनुष्यों की 2 श्रेणियां बताते हैं,
जिनका भेद रोम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अबू बकर द्वारा भेजे गए इस्लामी योद्धाओं को करना था। एक श्रेणी वे कैथोलिक भिक्षुओं की बताते हैं जो रविवार को उपासना करते थे, और दूसरी श्रेणी वे थे जो सातवें दिन उपासना करते थे। इस्लाम को केवल सूर्य उपासकों पर आक्रमण करना था। हमारे विचार के लिए अधिक महत्वपूर्ण ये है कि मनुष्य चाहे रविवार मानने वाले हों या विश्राम दिन मानने वाले, प्रतीकात्मक रूप से घास, हरे पौधों और पेड़ों के रूप में दर्शाए गए हैं। अध्याय 7 में चार पवनों को घास पर बहने से रो सगाया था, जब तक कि विश्राम दिन मानने वालों पर मुहर नहीं लगा दी गई।
144,000 के आंदोलन का दूत परमेश्वर से पूछता है, मैं क्या पुकारूं? उसे बताया गया कि उसका संदेश ये होना चाहिए कि परमेश्वर शौगर का वचन सदैव अटल रहता है, और उस संदेश को उस परिप्रेक्ष्य में रखा जाना था जिसमें हवा घास पर बहती है। जब सांत्वनदाता उन 144,000 के पास भेजा जाता है जो इस्लाम के बारे में की गई एक असफला भविष्यवाणी से निराश हो चुके हैं, और जो बाद में ये पहचान लेते हैं कि वे 10 कुंभारियों के दृष्टांत के विलंब के समय में है, तब सांत्वनदाता उन्हें सूचित करता है कि जो संदेश उन्हें प्रस्तुत करना है वो बाइबल की भविष्यवाणी में इस्लाम की भूमिका का संदेश है। विलंब के समय के इतिहास में सांत्वनदाता का आगमन उन्हें स्थिर कर देता है।
और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य पुत्र, अपने पैरों पर खड़ा हो जा और मैं तुझसे बात करूंगा। और जब वो मुझसे बोल रहा था, तब आत्मा मुझ में प्रवेश कर गई और उसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। तब मैंने उसकी बात सुनी जो मुझसे बोल रहा था। यहेज़केल 2:1-2।
जब वे पुनर्जीवित होते हैं तो वे खड़े हो जाते हैं,
और सब लोग, कुल, भाषाएं और राष्ट्र उनके मृत शरीरों को 3.5 दिन तक देखेंगे, और उनके मृत शरीरों को कब्रों में रखे जाने नहीं देंगे, और पृथ्वी पर रहने वाले उन पर आनंदित होंगे, उत्सव मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दो भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को सताया था, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, और जिन्होंने उन्हें देखा उन पर बड़ा भय छा गया। प्रकाशित वाक्य 11:9-11 तक देखिए।
खड़ा होने और फिर ध्वज के समान ऊपर उठाए जाने के ये दो चरण यहेज़केल ने अध्याय 37 में भी दर्शाए हैं। यहेज़केल का पहला चरण निराशा की घाटी में पड़ी मरी हुई दुखी हड्डियों के शरीर अंगों को एकत्र करता है। यहेज़केल का दूसरा चरण चार पवनों का संदेश है, जो मुहरबंदी का संदेश है, जो इस्लाम का संदेश है।
और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य का पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु परमेश्वर, तू जानता है। फिर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों के विषय में भविष्यद्वाणी कर और उनसे कह, हे सूखी हड्डियों, प्रभु का वचन सुनो। प्रभु परमेश्वर इन हड्डियों से यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारे भीतर श्वास डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे, और मैं तुम्हारे ऊपर स्नायु रखूंगा और तुम पर मांस चढ़ाऊंगा, और तुम्हें ऊपर से त्वचा से ढक दूंगा, और तुम्हारे भीतर श्वास डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे, और तुम जानोगे कि मैं ही प्रभु हूं। सो मैंने जैसा मुझे आज्ञा दी गई वैसा ही भविष्यद्वाणी की, और जब मैं भविष्यद्वाणी कर रहा था तब एक ध्वनि हुई, और देखो एक कंपन, और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर हड्डी अपनी अपनी हड्डी से, और मैंने देखा कि उन पर स्नायु और मांस चढ़ाया और ऊपर से त्वचा ने उन्हें ढक लिया, पर उनमें श्वास नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, वायु से भविष्यद्वाणी कर, भविष्यद्वाणी कर हे मनुष्य का पुत्र, और वायु से कह, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, हे श्वास, चारों पवनों से आ और इन मारे हुओं पर श्वास फूंक कि वे जीवित हों। सो मैंने जैसा उसने मुझे आज्ञा दी वैसा ही भविष्यद्वाणी की, और श्वास उनमें आ गई और वे जीवित हो उठे और अपने पांवों पर खड़े हो गए, एक अत्यंत बड़ी सेना। यहेज़केल 37:3-10।
यशाया के जिस खंड पर हम वर्तमान में विचार कर रहे हैं उसमें जब सांत्वनादाता आता है तो वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं। फिर उन्हें एक ध्वज की तरह ऊंचे पर्वत पर उठा लिया जाता है और वे सुसमाचार की घोषणा करते हैं, जो कि पिछली वर्षा अर्थात तीसरे स्वर्ग दूत का संदेश है।
हे सियोन, जो शुभ समाचार सुनाती है, ऊंचे पर्वत पर चढ़। हे यरूशलेम, जो शुभ समाचार सुनाती है, अपनी वाणी बल से ऊंची कर, उसे ऊंचा कर मत डर। यहूदा के नगरों से कह, देखो तुम्हारा परमेश्वर, देखो प्रभु यहोवा बल के साथ आता है और उसकी भुजा उसके लिए शासन करेगी। देखो उसका प्रतिफल उसके साथ है और उसका प्रतिदान उसके आगे आगे है। वो चरवाहे की तरह अपने झुंड को चराएगा, वो मेमनों को अपनी भुजा में बटोर कर अपनी गोद में उठाएगा और दूध पिलाने वाली भेड़ों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने जल को अपनी अंजलि में नापा है और कर विस्तार से आकाश को नापा है और नाप में पृथ्वी की धूल समेटी है और तराजू में पहाड़ों को और पलड़ों पर पहाड़ियों को तौला है? किसने यहोवा के आत्मा को दिशा दी है या उसके परामर्शदाता होकर उसे सिखाया है? उसने किससे परामर्श लिया और किसने उसे समझ दी और उसे न्याय के मार्ग की शिक्षा दी और उसे ज्ञान सिखाया और उसे समझ का मार्ग दिखाया? देखो जातियां बाल्टी की एक बूंद के समान है और तराजू की धूल के समान मानी जाती हैं। देखो वो द्वीपों को बहुत छोटी वस्तु के समान उठा लेता है। लेबानोन का वन भी जलाने के लिए पर्याप्त नहीं, न उसके पशु होम बलि के लिए पर्याप्त हैं। उसके सामने सब जातियां शून्य के समान हैं, वो उन्हें शून्य से भी कम और व्यर्थ ठहराता है। यशाया 40:9-17।
जो अपनी कब्रों से निकल आए हैं उन्हें एक ध्वज के रूप में ऊपर उठाया जाता है और यशाया के अनुसार उन्हें एक ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है। वो ऊंचा पर्वत ही ध्वज है और वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे उस विलंब के समय के दौरान जो 18 जुलाई 2020 की पहली निराशा से आरंभ हुआ था।
एक की ताड़ना से हजार भागेंगे, पांच की ताड़ना से तुम भागोगे, जब तक कि तुम पहाड़ की चोटी पर के एक संकेत स्तंभ के समान और पहाड़ी पर के एक ध्वज के समान अकेले न रह जाओ। और इसलिए प्रभु प्रतीक्षा करेगा कि वो तुम पर अनुग्रह कर सके और इसलिए वो उठेगा कि वो तुम पर दया करे, क्योंकि प्रभु न्याय का परमेश्वर है। धन्य है वे सब जो उसकी बाट जोहते हैं। यशाया 30:17-18।
प्रकाशित वाक्य 11 में ध्वज को स्वर्ग में लेके जाया जाता है।
और उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ी आवाज सुनी जो उनसे कहती थी, यहां ऊपर आओ। और वे एक बादल में होकर स्वर्ग में ऊपर उठ गए और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा और उसी घड़ी वहां बड़ा भूकंप आया और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप में 7,000 मनुष्य मारे गए और जो बाकी रह गए वे भयभीत हो गए और स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा दी। प्रकाशित वाक्य 11:12-13।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 बताता है कि दो गवाह भूकंप की उसी घड़ी स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। वो भूकंप जो इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति द्वारा पूरा हुआ रविवार के कानून के समय संयुक्त राज्य के उलट जाने का प्रतीक है, इसलिए पताका रविवार के कानून के समय उठाई जाती है और तब वो पताका समस्त संसार को शुभ समाचार की घोषणा करती है।
हे जगत के सब निवासी और पृथ्वी पर रहने वाले, जब वो पर्वतों पर पताका उठाए तब देखो और जब वो नरसिंगा फूंके तब सुनो। यशाया 18:3।
ध्वजवाहक तुरही बजने पर शुभ समाचार प्रस्तुत करेगा। प्रकाशित वाक्य की तुरहियों का अंतिम संदेश 7वीं तुरही है, जो तीसरी हाय है, जो कि इस्लाम है। यशाया, यूहन्ना और यहेजकेल सभी अंतिम दिनों के विषय में बोल रहे हैं और वे कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते।
रविवार के कानून के समय परमेश्वर की मोहर परमेश्वर की प्रजा पर लगाई जाती है।
जब तक हमारे चरित्र में एक भी दाग या मलिनता बनी हुई है, हम में से कोई भी कभी भी परमेश्वर की मोहर प्राप्त नहीं करेगा। हमारे चरित्र की खामियों को दूर करना, आत्मा के मंदिर को हर अशुद्धि से शुद्ध करना, ये हमारे ऊपर छोड़ा गया है। तब अंतिम वर्षा हम पर उसी प्रकार उतरेगी जैसे प्रारंभिक वर्षा पेंतेकॉस्ट के दिन शिष्यों पर उतरी थी।
भाइयों,
तैयारी के इस महान कार्य में आप क्या कर रहे हैं? जो लोग संसार के साथ एक हो रहे हैं वे सांसारिक सांचा ग्रहण कर रहे हैं और पशु के चिन्ह के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते, जो परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र करते हैं और सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को शुद्ध कर रहे हैं, ऐसे लोग स्वर्गीय सांचा ग्रहण कर रहे हैं और अपनी ललाटों पर परमेश्वर की मुहर के लिए तैयार हो रहे हैं। जब आदेश जारी होगा और छाप अंकित की जाएगी, तब उनका चरित्र सदा के लिए शुद्ध और निष्कलंक बना रहेगा। गवाहियां खंड 5, 214-217।
यद्यपि फरमान रविवार के कानून के समय जारी होगा, जो लोग मुहर प्राप्त करेंगे उन्हें मुहर के लिए तैयार चरित्र रविवार के कानून से पहले ही रखना होगा, क्योंकि रविवार का कानून वही संकट है जिसकी ओर परमेश्वर के वचन में वर्णित सभी संकट संकेत करते हैं। ये 10 कुवारियों के दृष्टांत में आधी रात का संकट या पुकार है।
संकट में चरित्र प्रकट होता है। जब आधी रात को एक गंभीर स्वर ने घोषणा की, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए निकलो, तो सोती हुई कुमारी कन्याएं अपनी नींद से जाग उठी और यह स्पष्ट हो गया कि किसने उस अवसर के लिए तैयारी कर रखी थी। दोनों ही समूह अचानक चकित रह गए, पर एक आपात स्थिति के लिए तैयार था और दूसरा बिना तैयारी के पाया गया। परिस्थितियां चरित्र को प्रकट करती हैं, आपात स्थितियां चरित्र का असली जौहर उजागर कर देती हैं। कोई अचानक और अप्रत्याशित विपत्ति, शोक या संकट, कोई अनपेक्षित बीमारी या वेदना, कुछ ऐसा जो आत्मा को मृत्यु के आमने सामने ला खड़ा करे, चरित्र के सच्चे आंतरिक स्वरूप को उजागर कर देता है। तब यह प्रकट हो जाएगा कि परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं पर कोई वास्तविक विश्वास है या नहीं। ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मा अनुग्रह से संभाली जाती है या नहीं, कि दीपक के साथ पात्र में तेल है या नहीं। परीक्षा के दिन सबके जीवन में आते हैं। परमेश्वर की परीक्षा और परख के समय हम अपना आचरण कैसे करते हैं? क्या हमारे दीपक बुझ जाते हैं या क्या हम उन्हें अब भी जलाए रखते हैं? जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है, उसके साथ अपने संबंध के द्वारा क्या हम हर संकट के लिए तैयार हैं? 5 बुद्धिमान कन्याएं अपना चरित्र 5 मूर्ख कन्याओं को नहीं दे सकती थीं। चरित्र का निर्माण हमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से करना होता है। रिव्यू एंड हेराल्ड, 17 अक्टूबर 1895।
बुद्धिमान कुंवारियों को पुकार उठने से पहले ही तेल चाहिए था, क्योंकि जब आधी रात का संकट आ जाता है तब तेल प्राप्त करना बहुत देर हो चुकी होती है।
निराशा युद्ध और रक्तपात की एक भावना है, और वो भावना समय के बिल्कुल अंत तक बढ़ती जाएगी। जैसे ही परमेश्वर के लोग अपनी ललाट पर मुहर बंद किए जाते हैं, ये कोई ऐसी मुहर या निशान नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि सत्य में स्थिर हो जाना है बौद्धिक और आत्मिक दोनों रूप से, ताकि वे डगमगा न सकें। जैसे ही परमेश्वर के लोग मोहर बंद होकर उस कंपन के लिए तैयार हो जाएंगे, वो आ जाएगा। वास्तव में ये पहले ही शुरू हो चुका है। परमेश्वर के न्याय अब भूमि पर हैं, ताकि हमें चेतावनी मिले जिससे हम जान सकें कि क्या आने वाला है। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस, खंड 1, 208-3।
परमेश्वर की मुहर सत्य में स्थिर हो जाना है, बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। उस मुहर को देखा नहीं जा सकता, पर ध्वज दिखाई देगा, क्योंकि दुनिया को चेतावनी देने का वही एकमात्र तरीका है। इसलिए एक समय ऐसा होता है जब मुहर दिखाई नहीं देती, उसके बाद रविवार का कानून आता है जब मुहर का दिखाई देना अनिवार्य होगा।
पवित्र आत्मा का कार्य ये है कि वो संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में समझा दे। संसार को केवल तभी चेताया जा सकता है जब वो उन लोगों को जो सत्य पर विश्वास करते हैं सत्य के द्वारा पवित्र किए हुए देखे, जो उच्च और पवित्र सिद्धांतों पर चलते हैं और उच्च उदात्त भाव से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वालों और उन्हें अपने पैरों तले रौंदने वालों के बीच विभाजन की रेखा दिखाते हैं। आत्मा का पवित्रीकरण उन लोगों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है जिन पर परमेश्वर की मुहर है और जो एक झूठे विश्राम दिवस को मानते हैं। जब परीक्षा आएगी, तब ये स्पष्ट दिखा दिया जाएगा कि पशु का चिन्ह क्या है। वो है रविवार का पालन करना। जो लोग सत्य सुन लेने के बाद भी इस दिन को पवित्र मानते रहते हैं, वे पाप के मनुष्य की मुहर लिए हुए हैं जिसने समयों और व्यवस्थाओं को बदलने का विचार किया था। बाइबल ट्रेनिंग स्कूल, 1 दिसंबर 1903।
रविवार के कानून से पहले जिसे अवश्य प्राप्त किया जाना है वो मुहर मसीह के चरित्र का पूर्ण विकास है और वो देवदूतों के सिवा किसी को दिखाई नहीं देती। रविवार के कानून के समय जो मुहर दिखाई देती है वो उन पर होती है जो सातवें दिन के शब्द का पालन करते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर के लोगों की मुहर अर्थात चिन्ह है।
तू इसराइल की संतानों से भी कह, निश्चय ही तुम मेरे सप्तों का पालन करोगे, क्योंकि ये तुम्हारी पीढ़ियों भर मेरे और तुम्हारे बीच एक चिन्ह है, ताकि तुम जानो कि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। निर्गमन 31:13।
144,000 की मुहरबंदी 18 जुलाई 2020 को शुरू हुई और रविवार के कानून से पहले पूरी हो जानी चाहिए।
हे जगत के सब निवासी और पृथ्वी पर रहने वाले, जब वो पर्वतों पर पताका उठाए तब देखो, और जब वो नरसिंगा फूंके तब सुनो। यशाया 18:3।
7 गर्जें जिन पर लगी मुहर अब खुल चुकी है, ये इंगित करती है कि 144,000 का इतिहास तीसरी विपत्ति की तुरही चेतावनी के संदर्भ में रखे गए एक संदेश का प्रचार करने का कार्य है। बाइबल की भविष्यवाणी में इस्लाम की तुरही वही है जिसे कब्र से उठाए गए ध्वजवाहक द्वारा बजाया जाता है। हर सुधार रेखा के 4 मार्ग चिन्ह, जो 1840 से 1844 के इतिहास के 4 मार्ग चिन्हों के साथ मेल खाते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि हर सुधार रेखा के चारों चरणों में हमेशा एक ही विषय रहता है। 144,000 के इतिहास में पहला मार्ग चिन्ह, जिसका प्रतिनिधित्व 1840 से 1844 द्वारा किया गया था, 11 सितंबर 2001 को संदेश का सशक्तिकरण था। वो मार्ग चिन्ह इस्लाम था। 144,000 के समानांतर इतिहास का दूसरा मार्ग चिन्ह 18 जुलाई 2020 की निराशा था। वो मार्ग चिन्ह इस्लाम की एक भविष्यवाणी थी जो समय के अनुप्रयोग से विकृत हो गई थी। तीसरा मार्ग चिन्ह, जो मध्य रात्रि की पुकार को चिह्नित करता है, इस्लाम की असफल भविष्यवाणी का सुधार है। यह सुधार समय के अनुप्रयोग के अस्वीकार का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा मार्ग चिन्ह रविवार का कानून है, जहां ऊंचा उठाया गया ध्वज सातवीं तुराही फूंकता है, जो तीसरी विपत्ति है अर्थात इस्लाम। यशाया का अध्याय 40 अगले 26 अध्यायों के लिए प्रारंभिक बिंदु की पहचान करता है। वो प्रारंभिक बिंदु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 11 में स्थित है, जब वे दो नबी जिन्होंने लोगों को सताया था फिर से जीवन में लाए जाते हैं। सातवना दाता उन्हें पुनर्जीवित करके खड़ा करता है और उसके बाद उन्हें स्वर्ग में उठा लिया जाता है। यशाया एलिया संदेश वाहक की पहचान जंगल में पुकारने वाली आवाज के रूप में करता है। वो संदेश वाहक तब पूछता है कि उसका संदेश क्या होना चाहिए, और उसे भविष्यवाणी के प्रतीकों में बताया जाता है कि इस्लाम का संदेश एक तुरही की चेतावनी है जिसे पताका घोषित करती है। फिर भी अंत के दिनों में इस्लाम को चेतावनी की तुरही के रूप में प्रस्तुत करने का एकमात्र तरीका ये है कि अतीत के इस्लाम की पहचान की जाए। मिलर राइट्स जिस प्रकार इस्लाम की शुरुआत को समझते थे और जैसा कि हबक्कूक के 2 पवित्र चार्टों पर चित्रात्मक रूप से दिखाया गया है, उसी का उपयोग तीसरी विपत्ति के इस्लाम की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए।
मैं प्रभु के दिन आत्मा में था और अपने पीछे तुरही के समान एक बड़ी आवाज सुनी। प्रकाशित वाक्य 1:10।
प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने अपने पीछे तुरही की ध्वनि जैसी एक आवाज सुनी, और यूहन्ना उन 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है जो अतीत से आने वाली एक आवाज सुनते हैं। यूहन्ना के पीछे की वो आवाज जो अतीत की तुरही की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है, अग्रदूतों की ये समझ है कि तुरहिया रविवार आराधना के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय थीं। पहली 4 तुरहियां सन 321 में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा पारित प्रथम रविवार कानून के प्रत्युत्तर में मूर्ति पूजक रोम के विरुद्ध लाई गईं। 5वीं और 6ठी तुरही जो पहली और दूसरी विपत्ति है, सन 523 में ऑर्लियंस की परिषद में पापीय रोम द्वारा भी एक रविवार कानून पारित किए जाने के बाद उसके विरुद्ध परमेश्वर के न्याय का प्रतिनिधित्व करती हैं। तीसरी विपत्ति जो इस्लाम से संबंधित है तब आती है जब संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार का कानून पारित किया जाता है। तब ध्वज उठाया जाता है और इस्लाम की भविष्यवाणीगत भूमिका की पहचान करता है जो इस्लाम की आरंभिक भूमिका पर आधारित है। ध्वज द्वारा घोषित संदेश तभी स्थापित हो सकता है जब उस संदेश को अल्फा और ओमेगा के परिप्रेक्ष्य में रखा जाए। यशाया के अध्याय 40 में इस परिचय के बाद परमेश्वर को अल्फा और ओमेगा के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे सशक्त और सबसे प्रत्यक्ष बाइबिलीय निरूपण कई लगातार अध्यायों में सामने रखा गया है। वे अध्याय यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य भीतर का यशाया द्वारा किया गया निरूपण है, जिसे परमेश्वर ने यीशु को इसलिए दिया कि वो अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र ही होने वाली हैं, और उसने उसे अपने दूत के द्वारा अपने दास यूहन्ना के पास भेजकर संकेतों में प्रकट किया, जिसने उसे एक पुस्तक में लिखा और उसे 7 कलीसियाओं के पास भेज दिया। हम अगले लेख में यशाया के निम्नलिखित अध्यायों पर विचार करेंगे।
धन्य है वो जो पढ़ता है और वे जो इस भविष्यवाणी के वचन सुनते हैं और उसमें लिखी बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 1:3।